आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ से राम जन्मभूमि तक का बदलाव आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक। गुवाहाटी में बोले मुख्यमंत्री, देवी अहिल्याबाई के समय से ही रेशमी साड़ियों की समृद्ध परंपरा, टेक्सटाइल मेले में स्टेट पार्टनर होगा प्रदेश। पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए अब सीयूईटी पीजी अनिवार्य, आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी निर्धारित। और मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सिंधु, जापानी खिलाड़ी को सीधे गेम में दी मात। अब समाचार विस्तार से। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ शुरू हुआ। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 को हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी वर्ष पुनर्निर्मित मंदिर के 1951 में दोबारा खुलने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की शाश्वत सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के महत्व पर आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेख का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में सोमनाथ से लेकर राम जन्मभूमि तक का जो बड़ा बदलाव हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि किस तरह भारत एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में उभरा है, जिसे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के काल से ही महेश्वरी और चंदेरी जैसी उत्कृष्ट रेशमी साड़ियों को प्रोत्साहन देने की समृद्ध परंपरा रही है। डॉ. यादव आज असम के गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की संभावनाओं, निवेशक अनुकूल नीतियों और रोजगार सृजन पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी टेक्सटाइल मेले में मध्यप्रदेश स्टेट पार्टनर रहेगा। वहीं पीएम मित्र पार्क के माध्यम से देश भर में बड़े निवेश और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई गई। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की।
मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, मैं आपके स्टेट में दो फाइबर पर काम करना चाहता हूँ। एक तो लीलन फाइबर पर, जो फ्लैक्स अलसी मध्य प्रदेश में होता है, दूसरा मिल्क वीट। हर स्टेट में उसके नाम अलग अलग है, लेकिन उनके मध्य प्रदेश में मदार है। तो ये भारत आज बदला हुआ भारत है, लेकिन ये बदले हुए भारत में हम राज्यों से अपील करना चाहते हैं कि सभी राज्य अपना एक रोड मैप बनाए।
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में प्रगति का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर एक नजर डालते हैं।
महाराष्ट्र में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में एक अहम परियोजना के तौर पर उभरा है। इस परियोजना को लगभग 11,406 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 1,320 मेगावाट है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2012 में शुरू की गई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को फरवरी 2016 तक पुनर्वास का मुद्दा हल करने और विद्युत मंत्रालय के सचिव को जनवरी 2017 तक परियोजना की दोनों इकाइयों को पूरा करने का निर्देश दिया। प्रगति के माध्यम से जिन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, उनमें से एक उजनी बांध से 115 किलोमीटर लंबी मेकअप वाटर पाइपलाइन थी, जो समयबद्ध विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति तंत्र का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है, जिसने भूमि, जल, पुनर्वास और संचरण जैसे मुद्दों को शुरुआती चरण में ही हल करके जटिल अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाया है। दीपेंद्र कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आईसीएआर और भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना गांव और खेती से जुड़ा है। गांव गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त, स्वावलंबी और समृद्ध बने, ये हमारी प्राथमिकता है। किसान सशक्त हो, उनकी आय बढ़े और उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करना होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर अर्थात पीजी कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीयूईटी पीजी उत्तीर्ण करने के बाद ही पीजी में प्रवेश मिलेगा। सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी और परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा किया जाएगा। विभाग ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय आवेदन कर परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन गारंटी बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए नए युग की शुरुआत है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि यह कानून महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप गरीबों, जनजाति और पिछड़े वर्गों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है। गुलाब उद्यान में आयोजित होने वाली 45वीं गुलाब प्रदर्शनी के द्वितीय इवेंट गमलों में गुलाब की प्रविष्टियां 9 जनवरी को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक गुलाब उद्यान परिसर में ली जाएंगी। आयुक्त उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण अरविंद दुबे ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति गुलाब उद्यान परिसर में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक तय किया जा रहा है। गुलाब के प्रति आम लोगों के रुझान को देखते हुए गुलाब उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भारत की पीवी सिंधु ने क्वालालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने आज जापान की टोमेको मियाजाकी को हराया, रोमांचक मुकाबले में 32 मिनट से मात दी। सिंधु चौथी बार मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। कल क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची या चीन की गाओ फांगजी से होगा। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। कई जिलों में रात का पारा 3 डिग्री से नीचे चला गया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम रही और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रवि वर्ष 2025-26 में सेवा सहकारी समिति, सर्विस सेंटर और बैंकों के माध्यम से किसान 15 जनवरी तक अपनी अधिसूचित फसलों का फसल बीमा करा सकते हैं। श्योपुर जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम और जन जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाधान योजना के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों में राहत प्रदान करने के लिए आगर मालवा जिले में निरंतर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल ग्राम भानिया में शिविर आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए 12 जनवरी को जिले में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। सीहोर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अवधि 20 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही धान विक्रय हेतु किसानों को 13 जनवरी से स्लॉट बुकिंग की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।